ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, दिल्ली के हर युवा को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता। अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने दिल्ली में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए व्यापार सखी कार्यक्रम शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न पुलिस सेवाओं में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने शहर के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हुई आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली के श्रम और रोजगार विभाग के अनुसार इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना और विभिन्न विभागों तथा औद्योगिक संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना था। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि दिल्ली का हर युवा सरकार की प्राथमिकता है और सरकार का लक्ष्य है कि शहर में कोई भी बेरोजगार ना रहे। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से एकजुट होकर इस दिशा में काम करने का आह्वान किया, जिससे हर युवा को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार रोजगार मिल सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि शहर में महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में डार्क स्पॉट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं तथा पीसीआर की पहुंच को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के एक रिक्त पद के लिए आज हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सत्या शर्मा ने जीत हासिल की। उन्होंने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हेमा को 35 मतों से हराया। चुनाव में कुल 227 वोट पड़े, जिसमें सत्या शर्मा को 130 और हेमा को 95 वोट मिले तथा 2 वोट अवैध घोषित किए गए। निगम महापौर राजा इकबाल सिंह ने सत्या शर्मा को जीत की बधाई देते हुए कहा कि उन्हें राजनीति में लंबा अनुभव है, जिसका निगम को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने लोगों से ईद उल अजहा के पर्व को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने की अपील की है। मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने लोगों से आग्रह किया कि त्योहार मनाने के दौरान वे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
मैं अपने भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप त्योहार को मनाएं, मगर त्योहार आप इको फ्रेंडली मनाएं। देखो, ऐसे जहां पर हमारा तो साफ सफाई का मेन काम है, ताकि कहीं कुर्बानी देर जा रहे हैं, कोई गंदगी ना फैले, हम उसको मेंटेन करके चलेंगे।
अखिल भारतीय व्यापारी संघ कैट ने मेटा के साथ संयुक्त रूप से आज व्यापार सखी कार्यक्रम की शुरुआत की। कैट के अनुसार इस पहल से देश भर में महिला व्यापारियों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर चांदनी चौक से सांसद और अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये कार्यक्रम महिला उद्यमियों, विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण भारत की महिलाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से महिलाओं को सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगी। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष और सार्वजनिक नीति प्रमुख शिवनाथ ठुकराल ने कहा कि ये पहल नारी शक्ति और महिला नेतृत्व वाले विकास के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं मुकेश कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बैंकों में लेनदेन में साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये गिरोह पूरे देश में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देता था।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के उपायुक्त आदित्य गौतम ने बताया कि गिरोह के लोग बैंक किट खरीदने और बड़ी रकम का लालच देकर लोगों को फंसाते थे। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के जरिए 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता लगाया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि साइबर गिरोह का पता लगाने के लिए खुफिया जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई जगह छापेमारी की गई, जिससे 2 बड़े साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ।
इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने मयूर विहार इलाके में रेड की और वहां से हमने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कुछ फेक अकाउंट बैंक अकाउंट किट्स भी मिले। आगे उन्होंने डिस्क्लोज किया कि उन्होंने इस तरह के बैंक किट्स दूसरे साइबर फ्रॉडस्टर्स को भी बेचे हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आगे हमने 2 अलग अलग जगहों पर रेड की और 2 साइबर फ्रॉड मॉड्यूल्स को हमने बस्ट किया, जिसमें से एक बैंक के लोन दिलाने के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड करता था, दूसरा लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करके और उनकी प्राइवेट फोटोज वीडियोज लेकर और उनको ब्लैकमेल करने का काम करता था।
श्री गौतम ने साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए कई उपाय भी साझा किए।
साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि साइबर स्पेस में भी हम अपना कंडक्ट वैसे ही रखें जैसा हम अपनी आम जिंदगी में रखते हैं। किसी भी तरह के अनजाने व्यक्ति के साथ अपने पर्सनल, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल डिटेल्स हमें नहीं शेयर करने चाहिए।
आनंद की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 28 मोबाइल फोन, 30 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 8 चेकबुक और 15 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि अवैध वित्तीय लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए गए कई बैंक खातों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इंडिया गठबंधन की आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि इस मामले को लेकर 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान सभी विपक्षी दल सशस्त्र बलों और सरकार के समर्थन में खड़े थे। बैठक में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के अन्य दल शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के निरंतर प्रयासों और आतंकवाद के खिलाफ सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के अनुरूप कई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विश्व के कई देशों का दौरा कर रहे हैं। ये शिष्टमंडल अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के तहत विदेशी नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली नीति विचारकों, मीडिया और प्रवासी भारतीयों से संपर्क कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की सफल यात्रा से आज सुबह स्वदेश लौटा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में बैजयंत पांडा ने इस दौरे को सफल बताया और कहा कि जिन देशों की उन्होंने यात्रा की है, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट कदम उठाए हैं।
हम अहिंसा के देश हैं, जिसमें भारत का न्यू नॉर्मल कि हम आतंकवादी हिंसा को जरूर रिटेलिएट करेंगे और माफ कर बिल्कुल प्रिसाइज तरफ से रिटेलिएट करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस वर्ष 1 नवंबर से शहर में बाहर से आने वाले सभी BS6 CNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के अलावा अन्य सभी कमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। दिल्ली सचिवालय में आज वायु प्रदूषण शमन योजना 2025 का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिन पर मिस्ट स्प्रे लगाए जाएंगे। इससे धूल कणों को कम करने में मदद मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पूरे शहर में 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स और 140 एंटी स्मोक गन्स मॉनसून को छोड़कर पूरे साल तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में 3000 स्क्वायर मीटर से अधिक जितनी भी वाणिज्यिक इमारतें हैं, उन पर एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो द्वारा 2300 ई ऑटो मेट्रो स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5000 नई इलेक्ट्रिक बसें भी लाई जाएंगी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली शहरी अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवा आवाजों, विशेषज्ञों और नेताओं को एकजुट करके शहरों का सतत विकास करना है।
इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने साइकिल चलाने को व्यायाम का सबसे अच्छा तरीका बताया, जो न केवल लोगों को स्वस्थ रखता है बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद करता है। उन्होंने इसे प्रदूषण की समस्या का समाधान बताया। श्री मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए संडे ऑन साइकिल पहल एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गई है। उन्होंने सभी से प्रतिदिन साइकिल चलाने और 2047 तक विकसित भारत की दिशा में योगदान देने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर सचिव अभिषेक सिंह ने आज कहा कि भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रणनीति का उद्देश्य स्वदेशी तकनीकों का निर्माण करना, AI को भारत के लिए काम करने योग्य बनाना और AI अनुप्रयोगों का निर्माण करना है जो वास्तव में जिम्मेदार, सुरक्षित और भरोसेमंद है। नई दिल्ली में AI तैयारी मूल्यांकन पद्धति पर यूनेस्को के संबंधित पक्षों के साथ परामर्श बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि AI प्रौद्योगिकियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहिए।
We need to kind of put a pause on these conferences and try to ensure that we align everyone in trying to be able to achieve the objectives that we have set for. And the objectives as outlined by Honorable Prime Minister in the Paris Action Summit, also mentioned in India's strategy for AI, is to build AI in India, make AI work for India and build AI applications that are truly responsible and safe and trustworthy and that make a difference to the lives of common people.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में राजस्व आसूचना निदेशालय DRI मुख्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्व आसूचना निदेशालय राष्ट्रीय आर्थिक मोर्चे पर प्रमुख संरक्षक है। तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी या अवैध व्यापार जैसे खतरों से देश की रक्षा करने में DRI की भूमिका के बारे में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि DRI भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में एक मजबूत कड़ी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, प्रांतीय सशस्त्र बल PAC, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले युवाओं को सेवा के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त हुए अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस और PAC में 20% आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव आया है एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, PAC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में उत्तर प्रदेश ने आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है।
निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझानों को स्वतः अपडेट करने वाली प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रणाली शुरू करने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी मतदान के दिन हर 2 घंटे के अंतराल में नए ECINET ऐप पर सीधे मतदान का प्रतिशत दर्ज कर सकेंगे, जिससे उससे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में हुए मतदान का आंकड़ा स्वचालित रूप से एक जगह एकत्रित हो जाएगा। इसके आधार पर उस क्षेत्र के अनुमानित मतदान प्रतिशत का रुझान वोटर टर्नआउट ऐप VTR पर उपलब्ध होता रहेगा। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में पूरे दिन धूप रही, वहीं कुछ इलाकों में हल्के बादल भी देखे गए। हालांकि शाम के समय तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली के हर युवा को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने दिल्ली में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए व्यापार सखी कार्यक्रम शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न पुलिस सेवाओं में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।